इस मन का नहीं और उपाय सतपुरुषों का जीवन ध्याय। इस मन का अर्थात संसार की बेचैनी का, उससे छुटकारा पाने का और कोई उपाय नहीं है। क्या है? सतपुरुषों का जीवन ध्याय। कि सतपुरुषों के जीवन पर ध्यान दिया जाए या सतपुरुषों के जीवन के पर ध्यान रखा जाए, इस बात को समझने के लिए गुरुदेव के जो दो महान शिष्य हुए उनके जीवन को समझना जरूरी है कि गुरुदेव ने किस प्रकार से उनके जीवन में खुद प्रवेश किया और उनको ऐसी स्थिति में ला दिया कि उनके अंदर सदैव गुरु की याद, गुरु का ध्यान बना रहा। उनके एक तो ज्ञानी शिष्य हुए सोमराजी के रूप में और दूसरे हुए प्रेमी शिष्य जो प्रेम का भंडार थे भक्त बनारसीदास जी। महाराज जी ने अपने शरीर शांत होने के पश्चात एक बार सोमराज जी को स्वप्न में दर्शन दिया और उनको कहा कि तू मेरी जीवनी लिख। सोमराज जी से जब बात हो रही थी तब उन्होंने कहा कि महाराज जी की बात स्वप्न में सुनी तो जरूर मैंने, लेकिन कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, उस बात को मैंने टाल दिया। कुछ दिन पश्चात फिर गुरुदेव स्वप्न में आए, फिर उन्होंने मुझको हुक्म दिया तू मेरी जीवनी लिख। इस बार फिर मैंने निश्चय किया कि जब गुरुदेव की ये इच्छा है तो मैंने फिर ये जीवनी लिखनी है। तब उन्होंने ये जीवनी जो मेरे गुरुदेव आप देखते हैं ये हिंदी में जीवनी लिखी थी जो 1980 में छपी थी। अब जब वो जीवनी लिख रहे थे तो वो कहते थे कि मैं तो गंगोठिया गया नहीं था, मुझको सारे वातावरण का, सारी स्थिति का कोई प्रैक्टिकल अनुभव तो था नहीं, परंतु गुरुदेव ने खुद मेरी मदद की और सारा दृश्य वो गंगोठिया का दिखाया। और इसीलिए जब आप ये जीवनी पढ़ें ध्यान से तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई आंखों देखी बात लिख रहा है, सारा जंगल का दृश्य, सारा वहां की नदियों का दृश्य, पहाड़ों का दृश्य। तो अब बताइए कि जो बात कह रहे हैं कि सतपुरुषों का जीवन ध्याय, तो शिष्य को कैसे गुरु ट्रेनिंग दे रहा है कि ऐसी परिस्थिति उनके लिए पैदा कर रहा है कि ताकि उसका ध्यान गुरु पर से ना हटे। और शकल पे नहीं, शकल की बात नहीं है, गुरु के जीवन की बात है। तो इसलिए ये जीवनी जो पूरे संसार में एक विलक्षण जीवनी लिखी गई है, मैंने अपनी लाइफ में ऐसी जीवनी किसी भी सतपुरुष की नहीं पढ़ी जो इतनी जीवंत जीवनी हो, जिसको पढ़कर ऐसा लगता है जैसे आंखों के सामने हमारे घटना घट रही। और वो कहते हैं कि उसके पश्चात जिस समय मौजूद थे महाराज जी, एक दिन मैं उनके पास बैठा हुआ था तो भगत जी से बोले काके नू पपीता खिलाओ। भगत जी पपीता काट के लिया है और जब मैंने एक टुकड़ा उसका खाया वो इतना कड़वा था कि महाराज जी की तरफ मैंने देखा, कहा महाराज जी ये तो बड़ा कड़वा है। तो महाराज जी कहते हैं प्रेमी इसको सब खाए, ये सारा पपीता तू खा ले। बोले मैंने वो पपीता खा लिया, लेकिन उस समय जिस आंख ने मुझे देखा था पपीता खाते हुए, वो आंख उस मेरे पीछे लगी रही। वो कहते हैं 16 वर्ष तक वो आंख मेरा पीछा करती रही। जब ये जीवनी पूरी हो गई और छपने चली गई, तब जाकर उस आंख ने मेरा पीछा छुआ। अब गुरु क्या होता है ये तो शिष्य ही जानता है, लेकिन ये जो बात वाणी कह रही है कि इस मन का नहीं और उपाय, सतपुरुषों का जीवन ध्याय, तो किस प्रकार से सतपुरुष जो योगी शिष्य है, जो पूर्व जन्म के संस्कार लेकर आया है और इस जन्म में उसकी पात्रता है कि पूर्ण गुरु मिले और उसकी यात्रा पूरी हो अंदर की, तो गुरु उस पर किस प्रकार की कृपा करता है कि गुरु का ध्यान शिष्य के दिमाग से हटता ही नहीं। लेकिन कहते हैं कि महाराज जी ने कड़वा पपीता क्या खिलाया, मैं नहीं जानता कि जिंदगी में गृहस्थ का सुख क्या होता है। हालांकि विवाह हुआ है, उनके 3 बच्चे भी थे, लेकिन मैं नहीं जानता कि जीवन में सुख क्या होता है। और वो सारी जिंदगी जो उन्होंने आध्यात्मिक लिखाई करी, उपनिषद के भाष्य लिखे और संगत के लिए इतना काम किया, ऐसा ज्ञानी शिष्य कोई कोई ही होता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस के एक विवेकानंद हो गए, वो तो सारी दुनिया घूम आए उनके संदेश को फैलाने के लिए, लेकिन सोमराज जी ने सारी दुनिया तो नहीं घूमी, लेकिन हिंदुस्तान में बैठे बैठे ही उन्होंने इतनी राइटिंग कर दी, इतना लिख दिया कि सारे जगत के लिए वो ज्ञान एक आदर्श ज्ञान बन गया। अब दूसरे शिष्य देखिए महाराज जी के, भक्त बनारसीदास जी। महाराज जी जब जलमादा में थे 1938 में, वहां उनको जब ये आत्मलीनताई मिली थी जिसको सहज समाधि कहते हैं, वहां पर भगत जी अपने एक साथी के साथ वो पहुंच गए थे। वहां पर महाराज जी के आगे बैठे थे तो महाराज जी ने पूछा प्रेमी कहां से आए हो, तो भगत जी बोलते हैं महाराज जी पता नहीं कहां से आए हैं, बस इतना ही कहा। फिर महाराज जी जो है वो समाधि में चले गए। अब बताइए कि एक नया शिष्य जिसने पहली बार महाराज जी को देखा है, महाराज जी के सामने बैठा है, उसके पश्चात फिर महाराज जी की समाधि टूटी, तो फिर उन्होंने कोई बात की उनसे 1-2 मिनट की, फिर समाधि में चले गए। उसके पश्चात समाधि टूटी ही नहीं, वो प्रतीक्षा करते रहे, अंधेरा होने वाला था। उनके साथ जो ठाकुर दीवान सिंह जी आए थे, उनके साथी जो थे, वो दोनों वापस अपने घर वापस से चले गए। उसके पश्चात वो रोज रात को वहां आ जाते थे, उस पहाड़ी पर कोहाला गांव था वहां वो रहते थे, वहां से पैदल ही जलमाला गांव आ जाते थे, और वहां के जो उनके प्रेमी थे वो उनको सबको भोजन कराते थे, और सारे प्रेमी रात के 12-1 बजे तक महाराज जी से बातें करते रहते थे, फिर पैदल गांव जाते थे, जबकि रास्ते में पहाड़ी जंगल भी पड़ता था, सारी बाधाएं थी, लेकिन रोज का ये नियम था। उसके 7-8 दिन बाद क्या हुआ, एक बात पास में था, वहां से 2-4 किलोमीटर की दूरी पर एक निखेत्र गांव था, तो वहां पर एक प्रेमी महाराज जी के रामदित्ता मल रहते थे, वो एक दिन उनको लेने के लिए आ गए कि आप हमारे गांव चलिए। उस दिन वहां रहिए, वहां की जो जनता है उसका कल्याण कीजिए। खैर वो प्रोग्राम ला के चल दिए। अब ये भज्जी भी उस समय वहां मौजूद थे, तो जब एक बटोक नदी पड़ती थी तो वहां से महाराज जी ने घोड़े से ही गांव जाना था, तो ये प्रेमी वहां रुक गए। अब विचार करिए केवल 7-8 दिन का वक्त था केवल जो महाराज जी से मुलाकात हुई थी भगत जी की, इसी बीच में उनके अंदर महाराज जी के प्रति इतना प्रेम बढ़ गया कि जब महाराज जी नदी पार करके जाने लगे घोड़े पर सवार होकर, तो भगत जी फूट फूट कर रोने लगे। उनकी इच्छा थी कि महाराज जी मुझको भी अपने संग रख ले, कि महाराज जी ने बस इतना ही कहा, प्रेमी इनको सदैव हृदय में देखे, ये तुमसे दूर नहीं है। वो वाणी में आता भी है, सदगुरु तो अंतर रमे, पल पल करें पुकार, आज्ञाकारी होए के तू घटका पाट उभार। यहां भी गुरु उसको वही बात कह रहे, गुरु अंतर्यामी है, लेकिन साधारण जो बुद्धि है वो इन बातों को कहां समझती है। गुरु बात ठीक कह रहा है लेकिन इन बातों को समझने में वक्त लगता है। खैर, भगत जी वापस आ गए अपने गांव और महाराज जी वहां से जब जो भी 8-10 दिन रहे होंगे, 10-12 दिन रहे होंगे, तो वापस लौटे। तो फिर महाराज जी, क्योंकि सम्मेलन होता था अक्टूबर में वहां पर गंगोठिया में, तो फिर वहां से महाराज जी फिर गंगोठिया आ गए। सम्मेलन से एक महीना पहले वो आ जाया करते थे। अब देखिए कुदरत की करनी, भगत जी को पता लग गया था चिट्ठी के द्वारा कि महाराज जी आ गए। अब उसी बीच में जो बरसात का मौसम जो खत्म होता है, जानते हैं कि बुखार चलता है, भगत जी को बुखार आ गया। अब वो बुखार के का इलाज कराने के लिए अपनी माँ से कहा, मैं रावलपिंडी जा रहा हूँ। लेकिन सत्य ये था कि वो रावलपिंडी से महाराज जी के पास ही उन्होंने आना था, महाराज जी के पास आ गए। महाराज जी ने अपने पास रखा उनको, तो जिस दिन पहुंचे थे उसे अगले दिन की बात है, जब दोपहर का उन्होंने भोजन ग्रहण कर लिया, उसके बाद वो लेट गए, घंटा डेढ़ घंटा सो गए। जब सोकर उठे वो आंख खुली तो देखते हैं कि महाराज जी उनके पंखे से हवा कर रहे हैं। बड़े शर्मिंदा हुए, उठ के बैठ गए कि महाराज जी ये कैसी कृपा कर रहे हैं, क्या ये गुरु का काम है कि शिष्य की सेवा करे। लेकिन महाराज जी ने इतने कहा, प्रेमी ये सेवा करवाने वालों में से नहीं है। उसके बाद की बात है कि महाराज जी क्योंकि जंगल में जाया करते थे, पीर ख्वाजा जंगल में, तो भगत जी भी साथ में चले गए और एक विशाल वृक्ष था हरा भरा, उसके नीचे महाराज जी अपने, वही कंकड़ हैं, कांटे भी हैं, पत्ते भी हैं, लेकिन ना महाराज जी ने कुछ बिछाया वहां पर, ऐसे ही वहां पर बैठ गए, वो तो समाधि में चले गए। भगत जी फिर अपने कपड़े धोने होंगे, कपड़े धो धोवा के जब आए लौटकर महाराज जी के पास, तो क्या देखते हैं कि महाराज जी के मुंह से वाणी निकल रही है और आंखें बंद हैं। तो भगत जी के लिए तो ये करिश्मा था, तो उनकी जेब में एक पेंसिल थी, एक नोटबुक थी, उन्होंने निकाली और वो वाणी लिखने लगे। महाराज जी की जब समाधि टूटी तब भगत जी से बोले, प्रेमी ये क्या लिख रहे हो, ये बातें घर घाट का नहीं रहने देती। तो खैर महाराज का, प्रेमी जो लिखा है सुना, प्रभु की क्या कृपा प्रकट है। तब भगत जी ने महाराज जी को सुनाया, सत बुद्धि धर बावरे, कर सतगुरु पहचान, जाके दरस के परसते, मिटे 84। कहते सत बुद्धि धर बावरे, कर सतगुरु पहचान। ए बावरे, बावरा कहते हैं आधे पागल इंसान को, या जिसकी बुद्धि ठीक काम ना कर रही हो उसको बावरा कहते हैं। कहते हैं सतबुद्धि धारण कर, वाणी कह रही है, कर सतगुरु पहचान, और सतगुरु की पहचान कर, जाके दरस के परस ते, मिटे 84 पर। जिसके दर्शन प्राप्त होने पर इस 84 के चक्र जीवन से समाप्त हो जाता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब इस वाणी के यहां पर दो अर्थ हैं, एक तो बाहर का दर्शन, लेकिन 84 के बंधन से मुक्त होने के लिए तो सहज समाधि चाहिए जो महाराज जी को मिली थी, और कितना लंबा तप महाराज जी ने किया था, पिछले जन्म में भी करके आया हूं। मां जी ने खुद ही कहा था प्रेमी पिछले 3 जन्म की कमाई है। तो ये लगातार जो परिश्रम व्यक्ति करता है, गुरु आज्ञा पालन करता है, तब प्रभु खुद ही बार बार उसके सामने गुरु बनकर आते हैं और आगे मार्गदर्शन करते हैं जब तक कि वो उस अंतिम मंजिल तक पहुंचना चाहिए। तो इसीलिए जाके दरस के परस ते मिटे 84 का, जिसका दर्शन प्राप्त होने पर, वो कहां दर्शन प्राप्त होता है, अंदर दर्शन प्राप्त होता है, जो 10वें द्वार के अंदर उस गुरु का दर्शन, अर्थात वो जो नाद रूप परमेश्वर है वो है वास्तविक गुरु। जो अंदर उस वास्तविक गुरु से भेंट होती है तब ये 84 का चक्र समाप्त हो जाता है। तो अब भगत जी जब वापस आए जंगल से, उसके पश्चात 7-8 दिन रहे महा जी के पास, फिर वहां से विदा हो लिए। महा जी उनको उनके घर से थोड़ी दूर एक स्कूल था वहां तक पैदल छोड़ने गए और वहां से फिर वो वापस घर चले गए। उसके पश्चात देखिए भाग्य की बात, महा जी का ये सम्मेलन होने वाला था जब उससे पहले ही उनकी मां की मृत्यु हो गई। तो मां की मृत्यु हुई भगत जी की, तो फिर महा जी के पास आ गए। उसके पश्चात वहां पर भी महा जी ने एक ही बात कही, प्रेमी जिन पर प्रभु कृपा करना चाहता है उनके बंधन खुद ही काट देता है। अर्थात मां की मृत्यु को वो उनका बंधन करके कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि महाजी जानते हैं कि ये सारे बंधनों के कारण जीव वो हिम्मत नहीं जुटा पाता जो एकांत में रहकर प्रभु की भक्ति के लिए जरूरत जिसकी पड़ती है। तो महाराज जी फिर उनके पास फिर वो 7-8 दिन रहे आके, लेकिन जब वो जाने लगे तब उन्होंने बस एक ही बात कही, प्रेमी ये धीरे धीरे ये बंधन छोड़ने पड़ते हैं, और इसलिए माँ की मृत्यु के नाम पर अपनी मृत्यु याद करो और इस जीवन में कुछ सत्कर्म की कमाई करो। ये संदेश महाजी ने को दिया। उसके पश्चात फिर सम्मेलन आया, सम्मेलन में भी भगत जी उपस्थित हुए अपने मित्र के साथ, और फिर दोनों ने सारी सेवा की। सेवा के पश्चात फिर वो 8-10 दिन महाजी के पास रहे, और वहां से जब विदाई हुई उनकी तो भगत जी कहते हैं कि महाराज जी हमको काफी दूर तक छोड़ने आए और उसी स्कूल के पास आके खड़े हो गए, वहां एक वृक्ष था उसके नीचे, और उनकी जो महाजी की बहन थी करतार देवी वो भी उस समय साथ थी उनके। तो भगत जी फिर फूट फूट कर रोने लगे, उन्हें पता था महाराज जी को मुझे छोड़ना पड़ेगा, और उन्हें यह भी पता था कि महाराज जी यहाँ से अब बाहर जाने वाले हैं क्योंकि उसके बाद वो अहमदाबाद चले गए थे कई महीने के लिए। तो भगत जी फूट फूट कर रोने लगे, महाराज जी मुझे भी संग रख लीजिए। तो भगत जी क्या देखते हैं कि महाराज जी की आंखें उस समय गीली हैं, अर्थात भक्त के प्रेम को देखकर गुरु भी उन पर कृपा कर रहे हैं, अपना प्रेम बरसा रहे हैं। तो कितना प्रेम का संबंध होता है गुरु शिष्य के बीच में, ये भगत जी के जीवन से पता लगता है। इसीलिए सोमराज जी ने एक चैप्टर लिखा है मेरे गुरुदेव में, भक्त वत्सल। भक्त वत्सल कहते हैं जो प्रभु हैं वो सबकी माँ हैं, जैसे राम के परमहंस थे तो वो प्रभु को माँ ही कहा करते थे, और माँ वास्तव में उनके सामने प्रकट होकर जैसे महा जी प्रकट हो जाते थे, उनके उनका मार्गदर्शन करते थे, जो उसकी जरूरत होती थी, जो समस्या होती थी उसका समाधान वो मां करती थी उसका। तो प्रभु के लिए भक्त मां की तरह से होता है, प्रभु जो है भक्त के लिए मां की तरह से होता है, मां की तरह ही वो ख्याल रखता है। इसीलिए उनको भक्त वत्सल कहा जाता है, प्रभु को भक्त वत्सल कहा जाता है। हम प्रभु को भूल जाते हैं, प्रभु हमको नहीं भूलते। तो भगत जी जब वहां से वापस आए, उसके पश्चात हम सब जीवनी में पढ़ते ही हैं कि महाराज जी ने उनको जब पहला तप वो करने गए निखेत्र पर्वत पर, तो भगत जी को वहाँ उन्होंने साथ रखा था और उसके बाद भगत जी उनके साथ ही रहे आखिरी वक्त तक। इस प्रकार से देखिए कि जो वाणी बात कह रही थी कि सत्पुरुषों का जीवन ध्याय, इस मन का नहीं और उपाय, सत्पुरुषों का जीवन ध्याय। तो ये सत्पुरुषों के जीवन पर ध्यान रखा जाता है, ये कौन रखेगा? जो सत्पुरुष की बात को महत्व देगा और उसको जीवन में अपनाने की कोशिश करेगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो गुरु को भूल जाए। और महर्षि रमण भी यही बात अपने शिष्य को समझा रहे हैं। शांतम्मा जो उनके किचन में काम करती थी रमणाश्रम में, तो दिन भर तो वो रसोई में काम करती थी लेकिन प्राण उसके गुरु के चरणों में पड़े रहते थे। तो एक दिन कंप्लेंट जब करी महर्षि रमण से, प्रार्थना की, महर्षि मुझको भी आपके चरणों में बैठने का मौका मिलना चाहिए, मैं तो दिन भर रसोई में लगी रहती हूँ। तो महर्षि रमण क्या कहते हैं कि तेरे लिए यही काफी है कि तू रसोई में काम करती रहती है फिर भी तेरा ध्यान गुरु चरणों में पड़ा रहता है, तेरे लिए यही काफी है। तो ईश्वर में प्राण पड़े रहे हैं आपके, चाहे सिमरन के द्वारा, चाहे गुरु फिजिकली मिल जाए तो उसके चरणों से, उनके जीवन से आपके मन में लगन हो जाए, लेकिन गुरु की याद आपके मन में बनी रहनी चाहिए क्योंकि गुरु परमेश्वर है, वो अंतर्यामी है। ऐसे ही वाणी नहीं करिए कि सदगुरु तो अंतर में पल पल करे पुकार, ये सत्य बात है। गुरु को वहम नहीं है कि वो शरीर है, हमको वहम है कि मैं शरीर हूं, मैं जीव हूं, मेरे लिए वो जीव कर रहे हैं और खुद वो परमेश्वर है, इसलिए वो अंतर्यामी है। तो ज्ञान के अनुसार जब मैं मनन करता हूं, ज्ञान के अनुसार जब मैं चिंतन करता हूं, तो याद रखिए कि आप प्रभु की याद भूल ही नहीं सकते। इसीलिए ये जीवनी जो ये छपी है मेरे गुरुदेव, ये साधारण पुस्तक नहीं है। भक्ति भाव से जो व्यक्ति भी इसको पढ़ेगा, और एक बार नहीं बार बार पढ़ेगा, सन 1981 में मैंने ये पुस्तक खरीदी थी जगाधरी से, और 81 के बाद आज 24 आ गई, लेकिन आज तक इस पुस्तक को पढ़कर मेरा मन तो नहीं भरा। जब भी पढ़ता हूं तो एक असीम रस आता है, एक गुरु के प्रति प्रेम भाव आता है, और उसका प्रभाव क्या होता है कि अंदर की जो ईश्वर भक्ति है वो और गहरी हो जाती है। तो ये गुरु ने खुद लिखवाई है, वो प्रभु ने खुद रचना करवाई है इस पुस्तक में, लेकिन हम इतनी लापरवाही करते हैं कि ऐसी पुस्तकों को घर में रखने की जरूरत भी नहीं समझते और कहते हैं हमें सब पता है, कहानी तो सुन लेते हैं, हम उसको कहानी करके देखते हैं। ये कहानी नहीं है, ये प्रभु प्रेम है, ये प्रेम का सागर है। तो जो उस प्रेम से इसको पढ़ते हैं और ध्यान रखते हैं, उनको गुरु की याद आती है, अंतर्यामी ईश्वर की याद आती है। अंदर तो वो ईश्वर प्रकट नहीं है हमारे, इसलिए रूखापन लगता है, सिमरन करते हैं तब भी, लेकिन गुरु के स्वरूप का हम वर्णन सुनते हैं, उसकी कहानियां, उसके किस्से जब पढ़ते हैं, तो हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है प्रभु के प्रति, जो हमारी सिमरन में सहायता करता है। तो इसीलिए जब भी मौका मिले हमको ऐसी पुस्तकें जरूर पढ़ना चाहिए, घर में भी रखना चाहिए। घर में रखेंगे तो फिर और लोगों को भी पढ़ने का मौका होगा, सत्पुरुषों की बातें हमको याद हो जाएंगी और लोगों से बातें करने का भी मौका हमको मिलेगा। इस प्रकार से ये गुरु का संदेश जो सबसे पहले मेरा फायदा करता है, फिर मेरे द्वारा दूसरों का फायदा करता है, इसलिए सत्पुरुषों की पुस्तकों को, उनके जीवन को जरूर पढ़ना चाहिए, उनकी बातों को, उनकी घटनाओं को जरूर ध्यान रखना चाहिए। ओम धम सत्यम।